लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है जापान में संत पापा फ्रांसिस की प्रेरित यात्रा पर एक संक्षिप्त रिपोर्ट। जापानी शहर नागासाकी के एटॉमिक बम हाइपो सेंटर पार्क से रविवार को संत पापा फ्रांसिस ने परमाणु हथियारों के उन्मूलन की जोरदार अपील करते हुए कहा कि इन विनाशक उपकरणों का अस्तित्व भ्रष्ट, विकारग्रस्त और अरक्षणीय है, जो केवल अकथनीय आतंक और हिंसा फैलाने के सिवाय और कुछ नहीं कर सकते। थाईलैंड और जापान में अपनी 7 दिवसीय प्रेरित यात्रा के दूसरे चरण में सार्वभौमिक कैथोलिक कलीसिया के परम धर्म गुरु संत पापा फ्रांसिस शनिवार को जापान पहुंचे थे। रविवार का दिन वे नागासाकी और हिरोशिमा में व्यतीत कर रहे हैं, जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान परमाणु बम हमलों और उसके परिणाम स्वरूप हुए नरसंहार का रंगमंच बने थे। सन 1981 में संत पापा जॉन पॉल द्वितीय द्वारा संपन्न जापान की यात्रा के 38 वर्ष बाद कैथोलिक कलीसिया के परमाध्यक्ष संत पापा फ्रांसिस जापान की यात्रा कर रहे हैं। जापान में उनकी यह पहली और इटली से बाहर 32वीं प्रेरितिक यात्रा है। रविवार को संत पापा ने नागासाकी के परमाणु बम हाइपो सेंटर पार्क पर पुष्पार्पण किए तथा 1945 ईस्वी के बम विस्फोट में मारे गए समस्त लोगों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की। नागासाकी के इस स्मारक स्थल पर उन्होंने इस तथ्य की पुष्टि की कि परमाणु हथियारों के बिना भी विश्व संभव है, किंतु इसके लिए सबका सहयोग, विश्वास, परस्पर संवाद और सतत प्रार्थना की नितांत आवश्यकता है। नागासाकी के नगराध्यक्ष तोमिहिसा ताए का कहना है कि संत पापा फ्रांसिस की जापान यात्रा तथा परमाणु हमले में पूरी तरह तबाह हुए स्थल से उनके द्वारा परमाणु हथियारों की निंदा संपूर्ण विश्व के लिए एक शक्तिशाली संदेश है। अमरीका द्वारा नागासाकी और हिरोशिमा पर गिराए गए एटम बमों से ये दो जापानी शहर पूरी तरह तबाह हो गए थे। लगभग 80 लाख लोग मौके पर ही मारे गए थे तथा 3 लाख से अधिक लोग कुछ समय बाद विकिरण और रेडिएशन से उत्पन्न घातक रोगों से मर गए थे।
संत पापा फ्रांसिस ने रविवार सुबह नागासाकी में शांति स्मारक का दौरा किया, जहां परमाणु विस्फोट से करीब 1,50,000 लोग मारे गए थे। संत पापा ने स्मारक के तल पर फूल चढ़ाया और कहा, यह जगह हमें उस दर्द और आतंक के बारे में गहराई से अवगत कराती है, जिसे हम इंसान एक दूसरे पर चोट पहुंचाने में सक्षम हैं। हाल ही में नागासाकी के महागिरजाघर में पाए गए क्षतिग्रस्त क्रूस और माता मरियम की मूर्ति ने बमबारी के पीड़ितों और अनेक परिवारों के अकथनीय वेदना को एक बार फिर से याद दिलाया। संत पापा ने कहा, मानव की सबसे बड़ी इच्छा शांति, सुरक्षा और स्थिरता है। परमाणु और अन्य हथियारों पर कब्जा करने से इस इच्छा को पूरा नहीं किया जा सकता। शांति और अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता आज पूरे मानव परिवार में परस्पर निर्भरता और साझा जिम्मेदारी वाले भविष्य की सेवा में एकजुटता और सहयोग की वैश्विक नैतिकता के आधार पर ही प्राप्त किया जा सकता है। संत पापा ने लोगों और राष्ट्रों के बीच शांति को बढ़ावा देने के लिए कैथोलिक कलीसिया की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। यह हर कैथोलिक का कर्तव्य है कि वह विश्व शांति के लिए ईश्वर और दुनिया के सामने बाध्य महसूस करे। उन्होंने कहा, प्रार्थना समझौतों के समर्थन में अथक परिश्रम और संवाद पर जोर देना सबसे शक्तिशाली हथियार है, जिसमें हम अपना भरोसा रखते हैं और न्याय तथा एकजुटता की दुनिया के निर्माण के लिए अपना प्रयास करते हैं, जो शांति का प्रामाणिक आश्वासन दे सके। संत पापा आश्वस्त हैं कि परमाणु हथियारों के बिना एक दुनिया संभव है, लेकिन हमें उनकी तैनाती के विकासकारी प्रभाव को, विशेष रूप से मानवीय और पर्यावरणीय प्रभाव को इंगित करने की आवश्यकता है, और परमाणु सिद्धांतों द्वारा भय, अविश्वास और शत्रुता के बढ़ते माहौल को अस्वीकार करना है। संत पापा ने सभी को प्रतिदिन मन परिवर्तन के लिए, जीवन की संस्कृति पर विजय के लिए, सामंजस्य और बंधुत्व के लिए प्रार्थना करने हेतु आमंत्रित किया। अंत में संत पापा ने शांति के लिए प्रार्थना हेतु असीसी के संत फ्रांसिस की प्रार्थना का पाठ किया। हे प्रभु, मुझे शांति का एक साधन बना। आइए हम विश्वास के साथ ईश्वर की ओर मुड़े और शांति के हर प्रयास के लिए प्रभावी साधन बनने के लिए निवेदन करें। अतीत की गलतियों का कभी दोहराव न हो।
नागासाकी के एटॉमिक बम हाइपो सेंटर पार्क से केवल 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित निशिजाका पहाड़ी पर रविवार को संत पापा फ्रांसिस ने कैथोलिक धर्म के शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि कैथोलिक शहीदों का साक्ष्य हमें अपने विश्वास में सुदृढ़ करता है। निशिजाका पहाड़ी नागासाकी का वह स्थल है जहां 5 फरवरी 1597 को संत पॉल मिकी और उनके 25 साथियों को कैथोलिक धर्म पर उनके विश्वास के खातिर मार डाला गया था। इन कैथोलिकों की हत्या के बाद से ही जापान में कैथोलिकों पर अत्याचार शुरू हो गए थे जो अगली 2 सदियों तक चलते रहे थे। जिस स्थल पर पॉल मिकी और उनके साथियों को मार डाला गया था, आज वहीं पर लाल ईंटों से निर्मित जापान के इन 26 शहीदों का स्मारक स्थल है। सन 1981 में संत पापा जॉन पॉल द्वितीय ने तीर्थ यात्री रूप में इस शहीद स्मारक पर श्रद्धार्पण किया था। इसके बाद से ही निशिजाका पहाड़ी पर स्थित जापानी कैथोलिक शहीदों का स्मारक स्थल तीर्थ यात्रियों की आराधना अर्चना का लक्ष्य बन गया है। पॉल निकी का जन्म जापान के क्योटो शहर के एक अभिजात परिवार में सन 1556 में हुआ था। 22 वर्ष की आयु में उन्होंने येसु धर्म समाज में प्रवेश किया था तथा जापान के प्रथम मिशनरी संत फ्रांसिस जीवियर के पद चिन्हों पर चल उन्होंने जापान में ख्रिस्तीय धर्म के प्रचार का बीड़ा उठाया था। येसु धर्म समाजी पॉल निकी के मिशनरी कार्यों और उनकी लोकप्रियता पर रोक लगाने के लिए ही जापान के तत्कालीन राजा शोगुन हिदेयोशी ने पॉल और उनके साथियों की गिरफ्तारी का आदेश दिया था। ओसाका में 1596 के दिसंबर माह में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था तथा 800 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नागासाकी तक पैदल चलने के लिए बाध्य किया गया था। नागासाकी में ख्रिस्तियों का बहुमत होने के नाते इसी शहर को उनकी हत्या के लिए चुना गया था। कठोर ठंड में 1 महीने तक पैदल चलते रहने के बाद पॉल मिकी और उनके साथी निशिजाका पहाड़ी पर लाए गए जहां उन्हें क्रूस पर लटकाकर मार डाला गया था। जीवन के अंतिम क्षणों तक पॉल मिकी अपने साथियों को ख्रीस्त पर विश्वास में मजबूत बने रहने का साहस देते रहे थे। 1627 में पॉल मिकी और उनके साथियों को धन्य घोषित किया गया था तथा 1862 में संत पापा पियूस नवम ने जापान के इन 26 शहीदों को संत घोषित कर कलीसिया में वेदी का सम्मान प्रदान किया था। संत पापा फ्रांसिस ने रविवार को शहीद स्मारक पर प्रार्थना अर्पित की और कहा कि यह स्थल मात्र शहीदों का स्मारक नहीं है क्योंकि यह मौत का नहीं अपितु जीवन का संदेश देता है। उन्होंने कहा कि यह शहीदों की पहाड़ी नहीं है अपितु यह सच्चे अर्थों में आशीर्वचनों का पर्वत है।
संत पापा फ्रांसिस ने नागासाकी के शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की तथा इस अवसर पर उपस्थित सभी लोगों को संबोधित कर कहा, मैंने इस पल का बहुत इंतजार किया है। मैं यहाँ एक तीर्थ यात्री के रूप में आया हूँ। आपके विश्वास को सुदृढ़ करने और उन भाई बहनों के विश्वास से पुष्ट होने जिन्होंने अपने साक्ष्य और भक्ति से हमारी राह पर दीपक जलाया है, आप सभी के स्वागत के लिए धन्यवाद। यह तीर्थस्थल उन तस्वीरों एवं नामों को धारण करता है जो कई सालों पहले शहीद हो गए थे, जिसकी शुरुआत 5 फरवरी 1597 को पॉल मिकी और उनके साथियों एवं कई अन्य शहीदों के द्वारा हुई थी जिन्होंने इस भूमि को अपनी पीड़ा एवं मृत्यु से पौत्र किया। फिर भी यह तीर्थस्थल मृत्यु से परे बात करता है। यह मृत्यु पर विजय की बात करता। संत पापा जॉन पॉल द्वितीय ने इस स्थान को न केवल शहीदों के पर्वत के रूप में किंतु आशीर्वचन के एक सच्चे पर्वत के रूप में देखा था, जहां हमारा हृदय लोगों के साक्ष्य से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता, जो पौत्र आत्मा से पूर्ण स्वार्थ आत्म संतुष्टि और अहंकार से मुक्त थे, क्योंकि यही सुसमाचार की ज्योति प्रेम से प्रज्वलित हुई, जिसने अत्याचार और तलवार पर विजय पाई। संत पापा ने कहा, आइए हम हमारी माता मरियम शहीदों की रानी संत पॉल मिक्की और उनके सभी साथियों से प्रार्थना करें, जिन्होंने पूरे इतिहास में प्रभु के अनोखे कार्यों को अपने जीवन द्वारा घोषित किया है, अपने देश और पूरी कलीसिया के लिए प्रार्थना करें, उनका साक्ष्य हम सभी में आनंद एवं मिशन को जागृत और पुष्ट करे।
नागासाकी के बेसबॉल स्टेडियम में रविवार को संत पापा फ्रांसिस ने कैथोलिक विश्वासियों के लिए ख्रीस्त त्याग अर्पित किया, जिसमें 35,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने भाग लिया। नागासाकी के महाधर्माधीक्षीय निवास से संत पापा फ्रांसिस अपनी कार से सीढ़ीदार चावल के खेतों और शरद ऋतु के आगमन से हरे पीले और लाल रंगों में बदलती पहाड़ियों का वैभवशाली नजारा देखते हुए नागासाकी के बेसबॉल स्टेडियम पहुंचे। छतरियों और प्लास्टिक की बरसातियां पहने रिमझिम गिरती वर्षा का सामना करते हुए ख्रीस्त त्याग समारोह से कई घंटे पहले ही लोग स्टेडियम के बाहर लंबी लंबी कतारों में खड़े होकर स्टेडियम के द्वारों के खुलने का इंतजार कर रहे थे। अपनी पारदर्शी पापा मोबिल से संत पापा फ्रांसिस ने ख्रीस्त त्याग के लिए एकत्र भक्तों का अभिवादन किया, जिन्होंने करतल ध्वनि और जय नारों से उनका अपने मध्य स्वागत किया।
ただいま教皇フランシスコが会場をお出になっております。
संत पापा फ्रांसिस ने जापान की अपनी प्रेरितिक यात्रा के दूसरे दिन नागासाकी के बेसबॉल स्टेडियम में यूखरिस्तीय बलिदान अर्पित किया। संत पापा ने कहा कि पूजन विधि वार्षिक कालचक्र के अंतिम रविवार को हम अपने को सूली पर चढ़ाए गए उस डाकू की आवाज के साथ संयुक्त करते हैं, जिसने यीशु को राजा स्वीकार करते हुए घोषित किया। अपमान और उपहास के बीच वह डाकू बोलने की क्षमता रखता और अपने विश्वास की घोषणा करता है। अपने जीवन के अंतिम घड़ी में यीशु उसकी बातों को सुनते और उसका उत्तर देते हुए कहते हैं, मैं तुमसे कहता हूँ, आज ही तुम मेरे साथ स्वर्ग में होगे। संत पापा ने कहा,
जी, en el momento menos triunfal y menos glorioso, bajo los gritos de burlas y humillación, el bandido fue capaz de alzar la voz y realizar su profesión de fe.
आज इस स्थल पर हम अपने विश्वास और समर्पण को नवीकृत करना चाहते हैं। हम अपनी असफलताओं, पापों और कमजोरियों से भली भांति वाकिफ हैं। भला डाकू भी अपने में इन बातों का अनुभव करता है, लेकिन हम इनके द्वारा अपने जीवन और भविष्य को धूमिल या परिभाषित होने देना नहीं चाहते हैं। उस भले डाकू की भांति हम भी अपनी आवाज उठाते हुए अपने विश्वास को घोषित करना चाहते हैं। संत पापा ने कहा कि हम जीवित ईश्वर पर विश्वास करते हैं। ख्रीस्त जीवित हैं और हमारे बीच कार्य करते हैं। वे हमें परिपूर्ण जीवन की ओर ले चलते हैं। वे जीवित हैं और हमें भी जीवित देखना चाहते हैं। वे हमारी आशा हैं। हम रोज दिन ईश्वरीय राज्य के आने हेतु प्रार्थना करते हैं। इन शब्दों के द्वारा हम अपने जीवन और कार्यों को प्रशंसा का एक गीत बनाते हैं। यदि हम प्रेरितिक शिष्य हैं, तो हमारा प्रेरिताई कार्य साक्ष्यों में परिलक्षित होने की मांग करता है। हम किसी बुराई के सामने इसका परित्याग नहीं कर सकते हैं। हम जहां कहीं भी रहें, हम यीशु ख्रीस्त के राज्य के खमीर बनने हेतु बुलाए जाते हैं। हम अपने को खुला रखने हेतु बुलाए जाते हैं, जिससे पवित्र आत्मा लोगों में आशा की सांस बने। स्वर्ग का राज्य हमारा लक्ष्य है। यह हमारे लिए केवल कल का लक्ष्य नहीं है। संत पापा ने कहा कि कलवारी में बहुत सी आवाजें दब गईं, वहीं दूसरे उपहास से भरे थे। केवल भले डाकू ने निर्दोष दुख से पीड़ित यीशु के पक्ष में आवाज उठाई। उसका विश्वास साहस से परिपूर्ण था। हमारे लिए यह चुनौती है। हम या तो चुप रह सकते हैं या उपवास या भविष्यवाणी कर सकते हैं। हम में से अधिक लोग भले डाकू की तरह बने और चुपचाप ना रहें और उपवास ना करें, बल्कि ईश्वरीय राज्य की सच्चाई और न्याय, पवित्रता और कृपा, प्रेम और शांति का प्रेरितिक साक्ष्य दें।
नागासाकी के बेसबॉल स्टेडियम में ख्रिस्तिया के लिए निर्मित वेदी पर मां मरियम की उस प्रतिमा को भी रखा गया जो सन 1945 ईस्वी के परमाणु हमले में नष्ट हुए निकटवर्ती कैथलिक महागिरजाघर में प्रतिष्ठित थी। हमले में महागिरजाघर पूर्णतः नष्ट हो गया था, किंतु पवित्र कुंवारी मरियम की प्रतिमा के अवशेष अभी भी सुरक्षित हैं। सन 1962 में इसी स्थल पर पुनः कैथलिक महागिरजाघर का निर्माण कराया गया था, जिसे आज उराकामी कैथलिक महागिरजाघर के नाम से जाना जाता है। ख्रिस्तिया प्रवचन में संत पापा फ्रांसिस ने परमाणु हमले के शिकार बने और 16वीं एवं 17वीं शताब्दी में ख्रिस्तीय विश्वास के खातिर उत्पीड़न का शिकार बने और मार डाले गए लोगों को याद किया। रविवार को दूसरे पहर संत पापा फ्रांसिस नागासाकी से लगभग 1.25 घंटे की विमान यात्रा तय कर जापान के हिरोशिमा शहर पहुंचे, जो नागासाकी के साथ ही सन 1945 में परमाणु हमले का शिकार बना था।
जापान के हिरोशिमा शांति स्मारक पर संत पापा फ्रांसिस ने शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किया तथा कुछ क्षण मौन प्रार्थना करने के बाद उन्होंने संदेश देते हुए कहा, करुणा के ईश्वर एवं इतिहास के प्रभु, इस स्थान से हम तेरी ओर नजर उठाते हैं, जहां मृत्यु और जीवन, क्षति और पुनर्जन्म, पीड़ा और सहानुभूति एक साथ मिले, यही बिजली और आग के एक भयंकर विस्फोट में अनेक स्त्री एवं पुरुष, कई स्वप्न एवं आशाएं गायब हो गए, जो अपने पीछे केवल छाया और खामोशी छोड़ गए, मुश्किल से एक पल में विनाश एवं मृत्यु के एक काले कुंड से सब कुछ तबाह हो गया। उस पाताल के सन्नाटे से हम आज भी उन लोगों की आवाज सुन सकते हैं जो अब नहीं रहे। उस भयावह घड़ी ने न केवल देश के इतिहास में बल्कि मानवता के चेहरे पर अपनी गहरी छाप छोड़ दी। संत पापा ने कहा कि मैं यहाँ सभी पीड़ितों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और उन लोगों की शक्ति एवं प्रतिष्ठा के सामने सिर झुकाता हूँ जो पहले क्षण में तो बच गए किंतु बाद में वर्षों तक अपने शरीर में गहरे घाव को सहा, जिसने उनके जीवन की ऊर्जा को समाप्त कर दिया था। संत पापा ने कहा, मैं शांति के तीर्थयात्री की तरह यहाँ आना, मौन प्रार्थना में भाग लेना, हिंसा के निर्दोष शिकार लोगों की याद करना तथा हमारे समय के लोगों की प्रार्थना एवं विषाद को अपने हृदय में लेना अपना कर्तव्य समझता हूँ। मेरी तीन अभिलाषा है कि मैं आवाजहीनों की आवाज बनूं, जो हमारे समय में बढ़ते तनाव के कारण चिंतित और परेशान हैं। युद्ध के लिए परमाणु ऊर्जा का प्रयोग अनैतिक है, इसके लिए हमारा न्याय किया जाएगा। भावी पीढ़ी हमारी असफलता के लिए हमें दोषी ठहराएगी यदि हम शांति की बात करके लोगों तक पहुंचने हेतु इस पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। हम शांति की बात कैसे कर सकते यदि हम युद्ध के भयंकर हथियारों का निर्माण करते हैं? शांति के बारे हम कैसे बोल सकते जबकि हम भेदभाव और घृणा के भाषणों द्वारा नाजायज कार्रवाइयों को सही ठहराते हैं? आइए हम आशा के लिए अपना हृदय खोलें तथा मेल मिलाप एवं शांति के माध्यम बने। यह हमेशा संभव है यदि हम एक दूसरे की रक्षा करें तथा महसूस करें कि हम एक आम लक्ष्य के द्वारा एक साथ जुड़े हैं। संत पापा ने कहा, परमाणु बम और युद्धों के शिकार लोगों की ओर से ईश्वर एवं सभी भले लोगों से एक ही अर्जी है कि हम एक साथ कहें, युद्ध फिर कभी नहीं, हमारे समय में और हमारी दुनिया में शांति आए। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ, अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।